Dette det Maulana Sayyid Shamshad Hussain Rizvi. Jeg ønsker ham velkommen med en høy salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Maulana Abul Qasim Muhammad. وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر وأصحاب الذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله تبارك وتعالى إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت صلى على محمد وآل محمد. اہم بات یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ اور جملے نہیں ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. یہ چہاردہ معصومین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا عنایات, ان کی کرم فرمائیاں, اور اہل بیت علیہم السلام اور باوفا صحابہ کرام کی جو عنایات رہی ہیں, اس کا یہ نتیجہ 13-14 سال کے بعد اوسلو کے صرف توحید اسلامک سینٹر کے مومنین ہی نہیں, ممبران ہی نہیں, بلکہ انجمن حسینی, محبان اہل بیت, برکت رضا, عرب, ایرانی, امام علی سینٹر, جتنے بھی مراکز شیعہ ہیں, اور اس کے علاوہ برادران اہل سنت کے جتنے سینٹر ہیں, جس میں خاص طور سے اسلامک کلچر سینٹر, مرکزی جماعت اہل سنت, ورلڈ اسلامک مشن, ادارہ منہج القرآن اور دوسرے سینٹروں کے مومنین مسلمانوں نے اس مسجد کی بنا میں دام درم سخنے مدد کی ہے. اگر کسی نے پیسہ نہیں دیا ہے تو مورل سپورٹ رہا ہے, اگر کچھ نہیں کر سکے ہیں تو دعا دی ہے. جو بھی ہوا بہرحال سب نے کہا مولانا شروع کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ مومنین و مومنات نے واقعی دل کھول کر کے مدد کی ہے, اور ان سب سے زیادہ ہم نے دعائیں لی ہیں اور ان دعاؤں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے. صرف میں آخری لمحات میں ایک بار اور گزارش کروں گا کہ ایک بار اور دعا کر دیجئے کہ جو کام باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی انجام پائے. اور اس بات کا اعلان جو 14 سال سے میں کر رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مسجد نہیں ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے, بلکہ انسانوں کی مسجد ہے, اس لیے کہ اس میں اگر کوئی بھی انسان, چاہے شیعہ سنی ہو, چاہے مسلم و کافر ہو, اگر اسلام و قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے تو سب کے لیے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں. اور انشاءاللہ یہ مرکز اور یہ مسجد جوانوں کے لیے اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک پائیک پائیگاہ ہوگی. روحن مبارک بحاد الفرصہ انما استطیع تکلم بخ فقط انا اشکر لکل المساہمین فی کل مکان ومن انحاء العالم الذین ساعدوا فی ھذا الامر. آپ حضرات کی معلومات کے لیے صرف میں اپنے آنے والے مہمانوں کی معرفی پہلے ہونی چاہیے, لیکن کچھ دوست بعد میں آنے والے تھے, اگر ہم پہلے کر دیتے تو ان بیچاروں کے رہ جاتی, اس لیے شیخ محمود جلول نے ادھر سے تعارف کرا دیا. ادھر چونکہ تعداد زیادہ ہے اس لیے اگر نام میں میں غلطی کروں گا تو آپ حضرت معاف کریں گے. حضرت آیت اللہ سمیدی, ان کی شخصیت بڑی اہم ہے, کابل افغانستان سے ہیں, حوض علم اقوم کے بڑے استاد تھے, جو درس نظامی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے, اور آج ہمارے مدرسے میں توحید اسلامک سینٹر سے ہمیشہ مربوط رہے ہیں, اور کوثر النبی کے بھی امام اور سرپرست ہیں. تو یہ تشریف لائیں, ان کے شکرگزار ہیں. حضرت آیت اللہ رمضانی کے ایشون در اتریشم بودن و امام سالیان سال در وین بودن, الان امام و سرپرست و رئیس مرکز اسلامی ہامبورگ هستند. من خیر مقدم هم میگیم و تشکر عرض کنم. حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد باقر انصاری کے حدود 30 سال ہست بزرگواری می فرمائن, उस जमान के बंदे तालाबे बुदाम मिसले पेदर ईशुन रहनुमाई में करदान उन जमान यादम हस के ईशुन मुसाहबे बंदे गिरफ्ते बुदान उन जमान हम यादम हस के ईशुन दर सदवान तबलीगात इस्लामी बुदान उन जमान हम यादम हस के हम्बुर बुदान हमेशे मोहब्बत में फरमुदान برای این مسجد اینقدر تشویق کردن گفتن برو رضوی کار کن یعنی بعضی موقع من خسته می شدم ولی با تلفن با ایمیل تا به حالیشون رحمه خدا سعیشون را کم نکنه و بس دعاگو هستم که انشاءالله با صحت و سلامتی که شخصیت والا هستن کتاب ها نوشتن تبلیغات خیلی مثل استاد هستن جناب حجت الاسلام الاسفین آقای حکیم الهی که خدمات ایشون ارزنده چه اندونیزی چه سوئد حتی نروژ و دانمارک هم ایشون امام و سرپرست امام علی هستند و کارها غیر از سوئد که واقعا همه ما مطلع هستیم به علمای شنگن و به علمای نروژ همیشه ایشون محبت دارند و جلسات هر وقت که عرض کردیم همیشه خنده پیشانی همیشه استقبال کردن و همیشه مهماندار بودن و واقعی رمزانی واقعی حکیم الهی ما صحبت کردیم که برای ما طلبه هم یک مدت کوتاه یه چیزی بذارن این هر دو بزرگواران قبول کردن نبت علی شاہ صاحب یہ ہمارے بڑے پرانے مہربان ہیں جماعت اہل سنت سے ہمارا بڑا پرانا ربط جس دن سے میں آیا ہوں میں وہ تنہا آدمی ہوں کہ جو عید میلاد النبی میں جب میں پہلی بار گیا ہوں میں وہ کاظمی صاحب سلیم صاحب تو جناب چشتی صاحب تھے ان کو کسی نے جا کے بتا دیا وہ بڑی بڑی شخصیتوں قادری صاحب کے ساتھ آگے تھے ان کو کسی نے بتایا کہ وہ ایک شیعہ مولوی آیا وہ چشتی صاحب دوڑتے ہوئے آئے وہ پیچھے سے ہمارا ہاتھ پکڑا ہو آگے چلے گئے اس کے بعد سے رویت ہلال کمیٹی ہو چاہے اسلامک ڈیفنس کونسل کا مسئلہ ہو یا جو بھی ہو بہرحال چشتی صاحب چلے گئے اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں شامل کرے اس کے بعد سے ہمارے نعمت علی شاہ صاحب بڑے بھائی کی حیثیت سے جب ایک بھی موقع ہوتا ہے تنہائیوں میں ہم بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں بعض لوگوں نے تانے دیے کہ یہ سنی شیعہ مولوی بیٹھتے نہیں ہیں لیکن ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے دکھایا کہ بھائی آپ لوگ تانے دیتے رہیں ہم بیٹھتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے قاری اشرف صاحب جو ہیں یہ ہمارے بڑے یار غار کی حیثیت سے بڑے ہی مہربان اور ہمارے بچوں کے بڑے شفیق چچا ہیں اور یہ ورلڈ اسلامی مشن ہی کے قاری نہیں ہے بلکہ یہاں ہر سینٹر کے یہ قاری ہے اور ان کی بڑی اچھی آواز ہے مولانا مقبول صاحب قبلہ کے 40 سال کے خدمات اس کے نیڑیوا میں ہیں جو اس کے نیڑیوا کے باپ کے حیثیت سے ہیں اور اسی لیے ان کی آج افتتاحی تقریر تھی یہ کتابوں والے ہیں اہل قلم ہیں ان کی بڑی کتابیں ہیں اردو زبان میں اور انشاءاللہ اور بھی کتابیں ان کی آ رہی ہیں حافظ جناب شیعہ میں ہوتے ہیں قاری صاحب ان کی بھی بڑی محبتیں ہیں اور حتیٰ کہ انہوں نے شیعہ بچوں کی قرآن پڑھانے میں انہوں نے بڑی مدد کی ہے هذا الاخ شیخ سلمان قاروت هذا هو یوسف یوسف عفن هذا هو انا اشتبهت قلت انما انا اشتبه عفونا هو في ستوكهولم وممثل مجلس الشيعة الاسلام العالى في اسكندنافيا فنرحب ونشكر بقدومكم اخ بوراس محمد بوراس من مجلس العالى اسلامک روڈ کے یہ ہیں مراکش سے تعلق ہے لیکن ان کی خاص بات ہے ہم لوگ بھی انڈال میں رہتے تھے لیکن ہمیشہ محبتوں کے ساتھ اور سب سے اہم بات ہے کہ جس وقت میں اسلامک روڈ کی بنیاد پڑی ہے ان کا بڑا کردار ہے اور بہت زمانے تک یہ پریسیڈنٹ رہے ہیں اور آج بھی ہیں مہتاب افسر صاحب بہت اچھے جوان ہیں ورلڈ اسلامک مشن کے ممبر ہیں لیکن ان کو ورلڈ اسلامک مشن کے لحاظ سے لوگ کم پہچانتے ہیں ان کو اسلامک روڈ سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ سنی شیعہ کے درمیان ایک پل کی حیثیت سے رکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے چاہا تھا کہ صرف توحید اسلامک سینٹر جو اسلامک روڈ کا ممبر ہے اس کو کسی طرح خارج کیا جائے لیکن بہرحال کئی ایک دوستوں اور ان لوگوں کی محبتوں سے اس لیے کہ بہرحال وہ اسلامک روڈ صرف برادران اہل سنت کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا اس لیے وہاں نمائندی ہے جناب مولانا مظفر نقوی صاحب بارسلونا اسپین سے تشریف لائے ہیں یہ مجلس شنگن کے نمائندے ہیں مولانا قبلہ علی رضا صاحب سے بڑی معذرت ہے کہ وقت ہمارا گزر گیا ویسے ان کا نام تقریر میں تھا لیکن چوں آپ کی بزرگواری سے معذرت کرتا ہوں اس لیے سب کو موقع نہیں مل سکا ہے علی رضا صاحب لاہور سے پاکستان سے ہیں لیکن یہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو और अपने चार साल के खिदमात में इंग्लैंड और लंदन और एक एक छोटे शहर में जा कर के ज्यारत करके इस मजलिस को पहचानवाया है। खुदा इनकी तौफीकात में इजाफा करे। मौलाना जवार साहब डॉक्टरेट किए हुए मशहद मुकद्दस से तालिब इल्म रहे हैं, मशहद में अंजुमन हुसैनी में सालिया निसाल से हैं, इनके खिदमात अर्जंदे हैं। मौलाना अदील अख्तर साहब को जिसने टीवी न देखा होगा वो महरूम है और नहीं पहचानता होगा। मौलाना अदील अख्तर गुलाम हुसैन अदील साहब अदील अख्तर में माजरत के साथ मैं बहुत मौलाना गुलाम हुसैन अदील साहब डायरेक्टर ऑफ हिदायत टीवी साहिब कलम और किताबें। मौलाना मुरीद साहब टिबला आप लोग सब जानते हैं कि ये किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हाफिज़ रियाज साहब और काजी साहब के भाई हैं। 15-16 साल डेनमार्क में इस्लामिक सेंटर जाफरिया के खतीब व इमाम रहे हैं और अब वो अपना मदरसा मदीनतुल इल्म चला रहे हैं। जनाब मौलाना जाफर रजब साहब अपने सकीना ट्रस्ट के इमाम हैं और बड़े एक्टिव और मजलिस उलमा यूरोप को अली रजा साहब के साथ आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मौलाना जाफर रजा साहब ये भी अपने रियाज साहब के बेटे हैं, हाफिज़ रियाज साहब के, और इटली में होते हैं। जनाब जो सिर्फ टोपी के साथ बैठे हुए हैं उलमा के साथ, वो इसीलिए बैठे हैं कि ये उलमा के साथ हैं। हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग मेजर जावेद सईद साहब जो डायरेक्टर हैं और हमेशा आप इनको टीवी में देखते हैं। मौलाना नजमुल हसन साहब ये मरहूम सफदर साहब के दामाद भी हैं, लेकिन सबसे बढ़ कर के ये ख़ुद इल्मी शख्सियत हैं और अपने मजलिस उलमा शिया के अहम रुकन हैं। मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला मेस्टा के ज़माने तक इमाम जुमा जमात रहे हैं, लेकिन स्वीडन की जो शिया तंजीमों की तंजीम है उसके सेक्रेटरी हैं और इनके बड़े खिदमात हैं। उसके बाद कौन है पंखे के पीछे हुए अगर वालदमन, इनके पीछे मैंने बड़ी बात की है और ये कि ये असली यूरोपियन मौलाना हैं जो डॉक्टर भी हैं और हौज़े इल्म हुकूम के भी पढ़े, हम उर्दू में बोल रहे हैं इसलिए वासिफ नाम के साथ। शेख अली सुबैती जैसा कि आपने देखा है कि इंग्लिश में आके तकरीर की, लेकिन असली तौर से वो लुबनान के हैं, बड़े एक्टिव मौलाना है और हमारी बड़ी पुरानी उनके साथ बहरहाल उनसे रवाबित हैं। मौलाना जफर मेहदी साहब चार पांच जबानों के माहिर हैं, कराची से ताल्लुक़ है लेकिन ये पेरिस में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानियों के अलावा अरबों में ये बड़े मकबूल हैं। हवाई इस्लामी के ईशोन तशरीफ़ अर्दन ब्राय मार्केज़ ईरानी इमाम अली ईशोन चंद महबूदन वलीमा आर्जुमंद बुदीन कीशन बेमानन वली खूब मसलहत खुदा नमीद हज अगर शेख मिसबा 21 दोस्तान व बरदरान बुजुर्गवार हसन आज अफगानिस्तान हरात खिदमात ईशन नाम काबिल दीद चंद तपस्तान नफर आलम दीन मोहम्मद हसन वली सियासी हम हसन अगर सैद दाऊद ईशन नाम आज अफगानिस्तान हसन, इनकी खिदमात भी अंजुमन हुसैनी और मरकज़ ईरानी मेरे बहुत अहम हैं। एक यूरोपियन मौलाना जो हमारे ईरानी और हेलसिंकी के हैं वो मौलाना अब्बास राब खड़े होकर अपने आप को दिखा दें। अगर शुमा खुद तो डिशन भी दी क्या कोचिक तरीन मुअम्मम रूपाई शुमा हस्ती अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आली। साजिद अली शरी साहब भी गुजरात पाकिस्तान से हैं, इटली में बड़े इनकी खिदमात हैं, कई जगह इन्होंने आज़ादारी को कायम किया है और अब मशगूल हैं मालमों में। मौलाना बस आखिर में दो तीन रह गए हैं, हमारे मौलाना मोहम्मद हसन मारूफी साहब, ये बिल्कुल देखने में तो इनको ऐसे ही देखते हैं लेकिन जब ये मिंबर पे आ जाते हैं तो फिर इनके ज़बानी करामात देखने वाले होते हैं। ये हमारे क्लास फेलो भी रहे हैं लखनऊ में यूनिवर्सिटी में कौम में, लेकिन ये अब 15-16 साल से हुसैन इस्लामी मिशन के इमाम हैं और जनाब मौलाना अली रजा साहब जाफर साहब के साथ ये बहुत आगे आगे चलने वालों में। काजी गुलाम अब्बास साहब लिस्बन पुर्तगाल से हैं, ये भी जनाब पाकिस्तान से हैं और वहाँ दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना मुशर्रफ हुसैनी साहब को आज से 15-16 साल जिन्होंने नहीं देखा था वो आज देख लें, जिनकी गरजती हुई आवाज़ ओस्लो की फिजाओं में गूंज रही थी और अब अहले बैत टीवी पर दिखाई देते हैं। गरचे ये देर से आए लेकिन इनकी गलती नहीं थी, गलती जहाज की थी। मौलाना वक़ार साहब ये पाकिस्तान से हैं, आखिर में जर्मनी में होते हैं और हम सब लोगों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सब की तौफीकात में इजाफा करे और हम सब लोगों को खिदमत दीन करने की तौफीक अता हो। तुरहतन से मास्टर से इंतज़ामिया के लोग आए हुए हैं, मोमिन के हम शुक्रगुजार हैं। डेनमार्क से आए हुए हैं शुक्रगुजार हैं। अगर सफ़ीर अगर नीली अपने दोस्तों के साथ आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के सफीर, तमाम सफरा और ये प्रीस हजरात जो भी आए हैं, उनके हम शुक्र। आखिर में केक कटने जा रहा है, इसलिए आप हजरात केक कट जाए, उसके बाद खाना लग रहा है, आप हजरात तनावल फरमाएं। सलवात फरमाएं। हाँ शेख लहजा, शेख अब्दुल अमीर हुआ अखूना वफी मजलिस उलमाए नॉर्वेज, शख्स मुहिम हुआ नायब सदर व एवन साहिब संदूक अल्लज़ी मा इंदहु फुलूस, शेख अबू जाफर हुआ साहिब संदूक लेकिन मा इंदहु फुलूस हज़ा हु अहमीद, व शेख शेख अहमद अफन हज़ा शेख अहमद फी तुरहतन। तमाम हजरात के शुक्रगुजार हैं जिनके हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, अंजुमन हुसैनी से, मुहिबान से और मरकज रजा से, जहाँ जहाँ से भी लोग आए सब के हम शुक्रगुजार हैं। तमाम सफीरों के, तमाम सिफारत के, प्रीस्ट के, सब के हम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक तआला सबकी तौफीकात में दे। अगर सैयद अबू ज़िया जो हैं वो भी हमारे मुहिम तरीन लोगों में हैं, वो भी इशारा कर रहे हैं, इंशाल्लाह सबकी तौफीकात में इज़ाफ़ो सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आसिमा रज़ा है और हम इस वक्त ओस्लो की तौहीद मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब में शामिल हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और कि अल्लाह ताला ने हमें आज ये दिन दिखाया है और ये कि मस्जिद की तामीर और तरक्की में बहुत सारे मोमिनों ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया है, हमारी मदद की है, उसमें यकीनन यूके के जो मोमिनों हैं वो उसमें यकीनन शरीक हैं। हम उन सबके तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी मदद की है और हम अल्लाह ताला का और पंजतन पाक का अतहार का शुक्र उनके शुक्रगुजार हैं कि उनके उनकी मदद से, उनकी हमारी मोमिनों की मदद से ये मस्जिद जो है इसका की तामीर मुकम्मल हुई है और हम लोग बहुत बेहद खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को ये सआदत नसीब हुई है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इसको अहसन तरीके से इस्तेमाल करने, इससे इस्तफादा हासिल करने और ख़ुद को एक बेहतरीन मोमिन बना और मोमिनात बनाने के लिए इस मस्जिद को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा यहाँ हम लोग इस हवाले से भी बहुत खुश हैं और शुक्रगुजार हैं कि उलमाए इस्लाम बहुत बड़ी और कसीर तादाद में यहाँ शरीक हैं और हमारी खुशियाँ उनके आने से दोबाला हैं। हम तमाम दुनिया के मोमिनों का, मुसलमानों का बेइंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी इस काविशों में हमारे शाना बशाना रहे हैं और उन्होंने हमारा साथ दिया है। बहुत शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तौहीद इस्लामी तौहीद मस्जिद का इफ्ताह हो रहा है और हमने जब आज से 10 साल पहले ये सोचा तक भी ना था कि हम इस मंजिल तक पहुंचेंगे और इस तरह की कामयाबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शुक्र खुदाबंदी किया जाए उतने ही कम है। मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मैं शुरू से सारे प्रोसेस में रहा हूँ और इसकी जो खुशी है इस वक्त कि इस वक्त दुनिया जहान के सारे मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं, उलमा जो हैं, वो हजरात आए हुए हैं, उनकी ज़्यारत करना, उनको देखना, उनसे मिलना ये बहुत बड़े शर्फ की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ अपने से भी और दूसरों से भी कि ये मस्जिद जो है, ये मरकज़ जो है, ये मस्जिद जो है, ये सारे मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि जो इस्लाम से दूर हैं उनको भी इस्लाम की तरफ खींचने का मूजब बनेगी और हम जो हैं वो सुरखरू हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ तो इस्लामिक सेंटर में एक ऐसे मेंबर के तौर पे यहाँ मौजूद हूँ जिसने आज से 20-25 साल पहले जब हमारे मौलाना शमशाद साहब यहाँ नॉर्वे में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ख्वाब देखा था कि यहाँ पर शिया मुसलमानों की एक मस्जिद होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 20 साल कबल जब हमने तौहीद इस्लामिक सेंटर की बुनियाद रखी तो हमारा बुनियादी मकसद यही था कि यहाँ जल्द से जल्द हम एक मस्जिद बनाने में कामयाब हो जाएं ताकि हम यहाँ पर अपने शिया और सुन्नी मुसलमानों भाइयों के साथ मिलकर इस्लाम की खिदमत कर सकें, इस्लाम को फ़रोग दे सकें, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस मस्जिद से फ़ायदा उठा सकें। इस सिलसिले में आज से तकरीबन 15 साल पहले हमने ये जगह ख़रीदी और इसी मकसद के लिए ख़रीदी कि हम यहाँ पर मस्जिद तामील करेंगे जो कि शिया मुसलमानों की नॉर्वे में ये पहली मस्जिद है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت مرکز اسلامی توحید کے ساتھ جو ابھی افتتاح تھا آج یہاں پہ مسجد توحید کے عنوان سے، واقعاً بہت ہی خوشی کا احساس ہو رہا ہے. بہت ساری مناسبتوں کے عنوان سے یہ آج افتتاح بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا، شعبان جو کہ رسالت کا مہینہ ہے. شعبان کی نورانی فضاؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے توحید پرست انسانوں کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اس مرکز کا آج افتتاح ہوا ہے. دنیا کے مختلف علاقوں سے علماء مومنین نے یہاں شرکت کی ہے اور اپنی نوعیت کا پہلا مرکز ہے یہاں پہ. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام تر انبیاء کی جو تمام تر محنت کا جو ثمر وہ چاہتے تھے وہی اعلاء کلمہ تو اللہ تھا. اسی اعلاء کلمہ تو اللہ کے لیے اور توحید کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے یہ مرکز قائم کیا گیا ہے. اور جیسا کہ ان کے بانیوں میں سے خصوصاً مولانا سید شمشاد حسین رضوی نے بھی یہ اعلان فرمایا کہ یہ مرکز یہاں پہ کسی خاص فرقے، کسی خاص مکتب کے ساتھ نہیں بلکہ یورپ میں رہنے والے ہر انسان کے لیے توحید کا میسج پہنچانے کا یہ مرکز ثابت ہوگا. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج کے اجتماع کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ تھی، یہاں پہ تمام تر مکاتب فکر نے کی نمائندگی یہاں پہ تھی اور یہ بات واقعاً ان کے اس قول کی اور بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ مرکز واقعاً اسی کلمہ توحید اور اسی کامن پوائنٹ کی طرف دعوت کا مرکز ثابت ہوگا انشاءاللہ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ظاہر ہے کہ خداوند عالم کی وحدانیت اور یگانگت ہی انسانوں کا بنیادی اور مشترکہ سرمایہ ہے. خداوند عالم کامیابیاں عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، میرا نام علی زامن خان ہے، میں یہاں اصول میں رہتا ہوں. آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ آج ہماری مسجد فائنلی بن گئی ہے اور ہم نے اس مسجد بنانے کے لیے بہت سارا کام کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسجد توحید اصلوں سے اہل بیت ٹی وی کے لیے یہ پروگرام دے رہا ہوں. میں شکر گزار ہوں محترمہ زہرہ زیدی صاحب کا جنہوں نے اپنے کیمرہ مین کو یہاں بھیجا اور اس خوشی میں شمولیت حاصل کی. بڑا اچھا ہوتا کہ وہ خود بھی آتی اور ان کے شوہر بھی تشریف لاتے تو اور بھی زیادہ رونق دوبالا ہوتی. بہرحال میں شکر گزار ہوں ان کا. مسجد توحید کا افتتاح جو ہے وہ بڑے اور مختلف زبانوں سے ہوا اور انہوں نے پورا ریکارڈ اس کو ریکارڈ کیا. اور آپ انشاءاللہ دیکھ کر خوش ہوں گی کہ ہمارے پاس اس وقت یعنی میجارٹی میں لوگ جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس خوشی میں ہمارا حصہ بانٹا. بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں مسجد توحید کے لیے کہ پروردگار عالم اس کو آباد رکھے، شادباد کرے اور اس میں دینی تعلیم بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور پانچ گانا با جماعت نماز کا انتظام ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ نماز جمعہ کا پروگرام آپ کے ٹیلی ویژن سے ڈائریکٹ نشر کیا جائے. آپ انشاءاللہ جب اکوپمنٹ ایسا مہیا کریں گے تو ہم گاہ بگاہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے کہ آج مسجد توحید اصلوں سے جمعہ کا پروگرام آئے گا اہل بیت ٹی وی کی طرف سے.
السلام علیکم. Sir, first of all, I would like you to introduce yourself for our viewers on Ahl al-Bayt TV.
Yes, my name is Egil Morvik, and I'm the deacon of from this church here in Norway. I represent the Bishop of Oslo, and he couldn't be here, but I'm very glad I could stand.
You're representing him here.
Yes.
One question. Today we have got an inauguration of a very beautiful mosque here.
Yes.
In Norway, and it's very in organizational, in the structure wise, otherwise it is built to be a mosque. So what incited you to come down, being a Christian and representing the Christian faith, what incited you that you should come and attend this?
I think it's very important that people from different religions comes together and visits each other, because the most important we think we do is to know each other. We have to see each other and meet. If you could,
that's okay. We understand. You know, actually, there is one very important common point between Christians and the Muslims, that we are waiting for Jesus Christ to come back. And we Muslims,
and we worship God.
And we are waiting, the Muslims are waiting for Imam Mahdi to come. And our teachings tell us that the time of coming back of Imam Mahdi is the same as the time of Jesus Christ. We believe in coming back of Jesus Christ also. So this will be a point of unity. If Jesus Christ and Imam Mahdi comes together and they unite the religions, what will be the reaction of the Christian population in your opinion?
I think Jesus said that we have to sit down together and to learn each other, to learn to talk to each other, because if we don't visit each other, visit the holy buildings, then we can't learn about each other. Therefore, it's important to be here for me.
So you think we are improving and having, benefiting from this closeness and coming together?
Yes, I think so. The largest problem today is that we think we know a lot of each other, but we don't.
We don't know.
We don't, and therefore we think that many Christians think that the Muslims are bad people because of the terrorism, all that. And I think perhaps it's the same thing the other way, because of the history, and therefore we have to come together and speak about things that we have common, values that we have common.
One thing, now you mentioned very rightfully that terrorism related to some of the population who claim to be Muslims.
Yes.
But in recent days, we heard the American president was telling that we will train the militants in Syria. So these are the militants who are killing other people.
Yes.
So, in fact, we have heard before that in Afghan jihad also there were some superpowers in supreme Western countries. They trained them.
None of the religions wants war. They want peace.
Yes, that's what I think.
All religions want peace.
In this situation, when the governments and when the countries they want militancy to increase, what role can religions play to decrease this militancy?
Religion can learn people to come together, that not fighting together, but speaking together, and perhaps praying together. That's some difference in that, but some difficulties in that, but we know that we have a God, we call him different names, but we have a God that wants us to live peacefully together, and not to get war
and
destroying each other.
Islam also says that if you kill one person, you have killed the whole humanity.
Yes.
It's like killing the whole humanity.
Yes, and I think the Christianity was said the same thing.
So what were your impressions with all the function going on today in this about this mosque? Did you like it or do you enjoy it?
In this mosque? Yes, very. It was a very good
And too
happening.
Many Muslim preachers also here. Did you feel free to talk to them?
Yes, of course. Yes, of course, I think what I think is the people here is very friendly, and many of them says to me that I'm from the church, and they says welcome, very nice to have you here, and that pleases me very very much. I'm glad for that.
We are also promoting the message of unity from Ahlul Bayt TV in London, based in London.
Yes.
It's Sky 836, and we are encouraging the message of unity between the religions, interfaith and intrafaith.
Yes.
And God bless you for all your views, and I think that will play a very positive role in taking all this message throughout the world.
Thank
it's
you.
Been seen in America, in Canada, in Asia, everywhere. In Europe, it's seen. So thank you, and
thank
God
you.
Bless.
God bless you.
Bismillahirrahmanirrahim. हम ओस्लो नॉर्वे के मोमिनीन के लिए आज एक बहुत खुशी का दिन है
और ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत और परवरदिगार के फजल और करम से और आयमा के एहसान से हमारे लिए आज ये इतना यानी एक मिसल ईद का दिन है कि आज हमारी मस्जिद जो ओस्लो नॉर्वे की मस्जिद है इसका यानी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हुआ है। इसमें बल्कि हमारे तमाम लोकल लोगों के ओस्लो के यानी मोमिनीन और मोमिनात के अलावा ओस्लो से बाहर बहुत से मोमिनीन और मोमिनात ने हमारे लिए बहुत माली मदद की, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दोनों टीवी चैनल्स के ऊपर बल्कि हमने चैरिटी यानी जमा करने के लिए पैसे किए का प्रोग्राम किए, उसमें बहुत सी खवातीन ने खसूसन हमारी मदद की। मैं ख़ास तौर पर उन खवातीन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनसे हमने इन टीवी चैनल्स के लिए जब हम माली मदद की दरख्वास्त की तो उन खवातीन ने हत्ता के कई खवातीन ने अपने जेवरात दिए और वो आज इंशाल्लाह इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए से हमारी मस्जिद को यानी अपने दिए हुए पैसे को देख सकती हैं कि वो एक मस्जिद में कहाँ कहाँ बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल हुआ है। परवरदिगार सबको इसका बेहतरीन अजर अता करे और परवरदिगार यहाँ के तमाम हमारी आने वाली नस्लों को इससे बेहतरीन इस्तफादा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला इस साल का रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए यादगार रमज़ानुल मुबारक होगा क्योंकि अब हमारे पास एक बाकायदा से मस्जिद है कि जिसमें इस मस्जिद में एक एतकाफ़ का माशाल्लाह से रजब के महीने में एक यादगार प्रोग्राम तय पा चुका है जिसमें माशाल्लाह 11 खवातीन भी उस एतकाफ़ में बैठी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे परवरदिगार आलम ने ओस्लो की मोमिनीन को नवाजा है जिसके लिए हम सब के सब खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। आज का दिन हम लोग के लिए नहायत ही खुशी का दिन है। आज हम लोग की मस्जिद की ऑफिशियली ओपनिंग हुई है और हम लोगों के लिए ख़ासतौर से जो जवान हैं यहाँ के हम लोग के बच्चे हैं हम लोग को इतनी खुशी है कि हम लोग के अल्लाह ने हम लोगों के लिए एक फरहम किया एक जगह जहाँ पे हम लोग एक मस्जिद है जहाँ पे हम लोग आके इबादत करें खुदा की दर्स में जाएं और बड़े लोगों से बातें सीखें और ये बहुत ही बड़ी हम लोग की बहुत ही बड़ी चीज़ नॉर्वे में स्कैंडिनेविया में ये पहली शिया मस्जिद है ये नॉर्वे में और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी के एक दिन है और सारे सब लोग इतने खुश हैं यहाँ पर आज खुदा का शुक्र है। और यहाँ पर इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक भी यहाँ पर होंगे, यहाँ पर इतिकाफ़ का भी सब कुछ सारे प्रोग्राम्स होंगे और इंशाल्लाह फिर बाद में मुहर्रम भी यहाँ पे होंगे सारी चीज़ें। तो खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग के यहाँ पे ये चीज़ सब फरहम अल्लाह ने किया है। शुक्रिया।
ओके, अस्सलाम वालेकुम। इट हैज़ बीन अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर टुडे इन दिस ओपनिंग ऑफ द तौहीद मॉस्क। The most special about it is that we inviting the Norwegian people to be a part of our mosque. We want them to be a part of our community as well as we are a part of their community. We gather all the different nationalities here. We have me, Swedish, Pakistani, Indian, Iraqis, Iranis, small, young, old. Everybody is here and everybody is getting respected. I feel very proud to be a part of this mosque since there are very good activities here. They have a very good crew with the youth that put a lot of programs. Almost every day you have something to come to if it is Aqid Kush or Quran school. You have different levels for the school for the children to come and learn the knowledge of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and about our Shia Islam. We also have activities for the women as for the guys, and this also brings us much more together as one. That is the main aim of Islam, to be one and to be together. And since I'm a convert from Sweden, one of the biggest reasons why I became a Muslim is because you find yourself back home. This is like your whole family. They take care of you, they look after you, they all want you well. It's a fantastic community actually, and the misconception about Islam is really heartbreaking because if they really could see the message of the Ahlul Bayt alayhi salam and the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the love, the light, it's incredible. You cannot describe it. So I'm very thankful, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Finally, after all these years, we have managed to build this Shia mosque here in Oslo, Norway. After all these struggles our grandfathers and parents went through, we have managed to build the first building of Shia mosque here. And we are very happy to have finally opened this. And we are very happy for all the people that came and enjoyed this day with us. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Main Nasra Kazmi, Narve se bol rahi hoon. Aur hum yahan aaye hue 32 साल हो गए हैं और हमने बहुत मेहनत की है और सब मुसलमानों ने हमारा साथ दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि तौहीद इस्लामी सेंटर का जो मकसद था वो आज पूरा हो गया है और ये मस्जिद बनी है और ये मस्जिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वसीले से, बीबी ज़ैनब के वसीले से और मौला पंच तनपा के वसीले से आज जो है ये अपने पूरी जगह पर जो है आ गई है। तो अब हम दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमान इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ें और ये मस्जिद जो है ये तमाम मुसलमानों के लिए है और अब मस्जिद तो बन गई है, अब मस्जिद को आबाद करना हम तमाम मोमिनीन व मोमिनात का काम है और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अच्छी उम्मीद के साथ कि ये मस्जिद पाया तकमील तक पहुँचेगी और जिसका सवाब हमें क़यामत तक मिलता रहेगा और तमाम मोमिनीन तमाम मोमिनात ने इसमें जो जो साथ दिया है वो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उनको भी इसका सवाब मिले। इल्तमास दुआ नासरा काज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब इधर मरकज़ तौहीद के इफ्तिताहिया के लिए जमा हुए हैं। मरकज़ तौहीद एक इस तरह का इदारा है जिसमें हर नस्ल, हर रंग और हर ज़बान के लोगों के लिए उसका दरवाज़ा खुला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन कलमा तौहीद पूरी जहान में छाएगा इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सारा हुसैन and I've been here for 2 years now and I feel so privileged to be here in Norway and see a Shia masjid even though I'm from England and I didn't have so much opportunity to contribute in the community there as much as I get to contribute here. Alhamdulillah we live nearby and the name of the masjid is Tawheed which means that anyone is welcome and because we live nearby we can contribute every day in the masjid. We have classes here, Quran classes, fiqh classes and there's something for everyone, for old, for young and alhamdulillah I feel so lucky that I'm here and I'm feeling so lucky that I'm in Norway and this small community and has such a big contribution. So I really feel privileged and alhamdulillah I hope everyone can come and see this amazing masjid. And
assalamu alaikum to Tawheed Islamic Center in Oslo, Norway, where we are celebrating the official opening ceremony of Tawheed Islamic Center, and we're very happy and proud because it's the first Shia mosque in Norway, which has been a goal of all of my grandfather for since I'm third generation, and we officially achieved it today, and we are celebrating the beginning of many more prosperous things to come in this Tawheed Islamic Center.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Monir Hosseini. I am originally Iranian, but I have been living in Norway all my life. I'm very happy today. It's the opening ceremony of Tawheed Mosque. This is a dream come true for many of us, and we have been dreaming about this for many years, and it's finally coming true. The amazing thing that we have here at this mosque is that many ethnicities are represented and the youth are very active at this mosque. Alhamdulillah to this year, it was the first i'tikaf and me and some of my friends had the honor and tawfiq to participate in the first ever i'tikaf at this mosque. So inshallah, I foresee many, many useful activities and a bright future for this mosque, inshallah.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Main Azma Zaidi baat kar rahi hu Norway se, Islami Tawheed Center se. Ye jo aaj Tawheed Center masjid ka iftitah hua hai, ye hum logon ka taqreeban 40 saal ka khwab tha jiski aaj taabeer mili hai. हम लोगों ने 79 में बहुत छोटी छोटी मजलिसें मतलब वो गिरजे में जाके और स्कूलों में किराए पे लेके शुरू करी थी और उसके बाद अंसारी साहब मुजफ्फर अब्बास अंसारी जो थे मेरे बच्चों के वालिद थे उन्होंने इस अंजुमन को रजिस्टर कराया और उसके बाद मौलाना साहब की काविशों से आज ये हमारा ख्वाब पूरा हुआ है और इसमें जिन जिन लोगों ने हिस्सा डाला है, बच्चों ने, बड़ों ने, कादमी साहब ने, सलीम जैदी ने, यानी कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, हमारे अजीज़ रिश्तेदार सब यही हैं, हम लोग हैं आपस में और सब ने मिलजुल के इस मस्जिद को आज कायम किया और हमारी दुआ है कि ये कायम रहे हमेशा और उसके अलावा जिन्होंने भी इस मस्जिद में एक दिन का भी किया है, उसको जवारे रहमत में जगह मिले और जनाबी सैयदा जो हैं इसका अजर देंगी।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवसिल हन्नास अल्लज़ी वसवसु फी सुदूरिन नास।
अस्सलाम वालेकुम, मैं तौहीद इस्लामिक सेंटर की जानिब से शहला जैदी मुखातिब हूँ। हमने इस वक्त को देखने के लिए जो काविशें कोशिशें सब ने मिल के ख़ानदान की तरह की, 35 साल के अरसे के अंदर आज ये जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया, ये एक इंतहाई शानदार रिज़ल्ट है, जिसमें ये तरबियत गाह जिसमें हमारे अल्लामा मौलाना शमशाद हुसैन रिज़वी साहब की काविशें, हमारे तमाम सेंटर के लोगों की वो मेहनतें शामिल हैं, हमारे बच्चों की, हमारे बुज़ुर्गों की, जिन बुज़ुर्गों में बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, कुछ लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जिन्होंने इस सेंटर को आगे बढ़ाने के अंदर और इस सेंटर को मस्जिद का नाम देने के लिए बहुत सी मेहनतें और काविशें की। ये आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमने अपने मंसूबे को, अपने मकसद को हासिल किया और आज हम एक छत में एक बेहतरीन मस्जिद में, शानदार पहली मस्जिद ओस्लो नॉर्वे की शिया मस्जिद, जिसके लिए हम आज इस जश्न को मनाते हुए सबको इसमें शिरकत की दावत देते हुए जो है इसमें हमने इसका इफ्तिताह हुआ है और हम सब लोग बेइंतहा खुश हैं कि परवरदिगार ने पंजतन के सदक़े में हम लोगों के इस मंसूबे को कामयाब किया, जिसमें हमारे तमाम मेंबरान की, हमारे तमाम बच्चों की, मर्दों की, ख़वातीन की, लड़कियों की जो जो मेहनतें हैं, परवरदिगार पंजतन के सदक़े में उनको कबूल करे कि 35 साल के अरसे में जो ये सफ़र हमने शुरू किया था, आज हम एक शानदार जामिया मस्जिद के साए में बैठे हैं, जिसमें हमारे मौलाना साहब का सबसे बड़ा हिस्सा है कि उन्होंने हमें तरबियत करके हमें इस मंजिल पर लगाया कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसी चीज़ का एहतमाम इंतज़ाम करके जाएं कि जो हमारी नस्लें याद रखें, और इसके लिए हम अपने मौलाना साहब के भी बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं, अपनी तमाम उस टीम के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इसके लिए मेहनतें की, उन बच्चियों के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन बच्चियों ने छोटे छोटे बच्चों के होते हुए भी इस वक्त को दिया और इतने बड़े अजीम व शान मंसूबे को पाए तकमील को पहुँचाया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम हर संडे मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में हमारा स्कूल होता है, स्कूल में हम पढ़ते हैं अल्लाह पाक और इमाम अब ज़ारा एक सूरा पढ़ेगी।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. I came from USA. We had a lot of big community, but when I came to Norway, my husband's grandfather, he has struggled a lot to build this mosque. Now his dream came true, so we are very happy